ॐ अज्ञामतिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकरम् चक्षुर्मुदितम् येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभिस्संस्थापितम् येन भूतले स्वयम् रूपकदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहम् श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुम् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साधुजातम् सगणरघुनाथम् तम् तम् सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजनसहितम् कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणरविता शीर्षाखान्तांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। आज हम लोग बलराम जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बलराम कौन है?
कृष्ण के बड़े भाई।
वाह, ये बड़े भाई छोटे भाई के लिए क्या करता है? भगवान का बड़ा भाई होना, भगवान से सच में बड़े होते हैं? बलराम हमें बहुत सिखाते हैं, पता है जो सिखाने वाले हैं वो गुरु होते हैं। कृष्ण भगवान के बारे में हम यदि कुछ जानते हैं तो बलराम के द्वारा, यानी कि बलराम सर्वप्रथम गुरु होते हैं। कौन होता है? गुरु। बलराम गुरु बनकर आते हैं। बल यानी शक्ति, राम इतने आनंद, अरे शक्ति और आनंद। ज्ञान में शक्ति होती है, जो ज्ञानी होता है तो उसकी भी कीमत की जाती है, यानी कि ज्ञान की ताकत है। किसके पास शरीर की ताकत हो तो वो भी बलराम कहलाता है, बलवंत बल्लू। कभी कभी बल्लू कहते हैं सब। बाद में देखो किसके पास बहुत धन होता है, है? तो धन की भी ताकत होती है, पैसों से गाड़ी लाती है, खरीदी जाती है, पैसे है तभी तो पैसे में ताकत होती है। लेकिन सारी ताकत थोड़ी सी ताकत होती है। किसी के पास सौंदर्य होता है तो बहुत आकर्षण, यानी कि किसी का आकर्षण करना वही ताकत कहलाती है, बल के। और किसी के पास सब कुछ छोड़ देने की भी ताकत होती है। सब छोड़ सकते हैं क्या? है? कोई विरक्त बन जाए, त्यागी हो जाए, कोई जोगी जोगटा बन जाए, कोई ना, बहुत थोड़े बनते हैं, क्योंकि वो बनना भी काफी ताकत का काम है। ये सब बलराम सिखाते हैं, इसलिए सर्वप्रथम गुरु भगवान कृष्ण के बारे में जो बताता है वो गुरु कहलाता है। तो बड़े भाई बनकर आए भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। पता है इनका विस्तार, वो बलराम क्या क्या होता है? उसे शंकरषण भी कहते हैं। शंकरषण वो जब अपनी भौतिक दुनिया में आते हैं तो शंकर के रूप में आते हैं। आपने जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो शंकर रूप वो नाग बनकर आए थे, वसुदेव उनको
वो टोकरी में ले जाते हैं जमुना पार कर, तो देखा था ना कि पीछे इनकी रक्षा इनकी इनका छाता बन के आया, अम्ब्रेला होती है ना, हाँ, तो बारिश में वो बलराम बन के आए थे। और बाद में देखो विष्णु जी की फोटो भी देखी होगी आपने, यहाँ कोई विष्णु की फोटो है? अरे देखो नरसिंह भगवान के पीछे भी शेषनाग है ना, वो भी बलराम का रूप है, बलराम विस्तार करते हैं। और भगवान विष्णु भगवान जब लेते हैं तो शेषनाग पर लेते होते हैं तो उसकी खटिया भी बन जाते हैं, ही बिकम्स द बेड, भगवान को आराम कर। यानी कि भगवान की कितनी ढंग से सेवा करते हैं, इनका ज्ञान बताते हैं, इनके लिए सारी चीज है। अब देखो ये जो सारी शक्ति का स्रोत बलराम कह रहा है, तो हमारी भौतिक दुनिया में भी जो जो शक्तियां हैं है ना, तो ये बलराम की पैदा की गई है, बलराम ने पैदा की। यदि बलराम नहीं होते तो कृष्ण भगवान को समझाने वाला भी कोई नहीं, इसलिए कृष्ण भगवान अपने आप का विस्तार करते हैं। कलयुग में वही कृष्ण भगवान भक्त के रूप में आए, भक्त के स्वरूप के रूप में आए, भक्तावतार के रूप में आए, भक्ति की शक्ति भक्त के भक्त बनकर भी आए और भक्ति की शक्ति लेकर आए, पांच चीज। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप है, नित्यानंद प्रभु बलराम भक्ताव का स्वरूप है, भक्तावतार अद्वैताचार्य, बाद में गदाधर पंडित है वो जो थे वो भक्त के भक्त हैं, और भक्ति की शक्ति, ये पांच मिलकर भगवान ने इस कलयुग में अवतार लिया। तो बलराम की शक्ति किस ढंग से समझा वो देखना। जो भी कुत्ता का वस्तु भगवान का परिचय कराने वाली है वो बलराम, बलराम बड़े भाई होकर इनकी जिम्मेदारी होती है कि कृष्ण तो भगवान है, बलराम उनका विस्तार। बलराम अपने आप को भगवान नहीं मानते क्योंकि भगवान की बराबरी वाले ही है, कृष्ण भगवान जैसी लीला करते थे रास लीला इत्यादि, तो बलराम की भी कई गोपियां इनके साथ थी, वो भी अपनी रास लीला करते थे, तो दोनों भाई कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं। लेकिन भगवान को समझना मुश्किल होता है, इसलिए भगवान अपने आप का विस्तार करते रहते हैं। तो भगवान को समझाने वाला बल जो होता है, जो ज्ञान का वस्तु है ही, वो स्थापित करना वो सब बलराम का काम होता है। हम यदि आपको पूछे तुम हो यहां तो क्या करोगे, सब कहेंगे हाँ है यहां, वो जानकारी ये है कि नहीं उसे कौन बता सकता है, कौन सी ऐसी शक्ति है, ये है उपस्थित होना, यहां मौजूद रहना, यहां हम हैं, वो यदि साबित करना हो तो बलराम की मदद लेनी पड़ेगी। ये पृथ्वी बनाई, ये घर बनाया, ये धाम बनाया जहां भगवान स्वयं रहते हैं, इनका भी धाम होता है, वो कौन जाहिर करता है, बलराम, तो सब बलराम जाहिर करते। तो जब भौतिक दुनिया बनी ना तो कहते हैं कि बलराम के यानी कि शेषनाग के मत्थे पर सारा ब्रह्मांड का भार होता है, यानी कि सारी चीजों का आधार बलराम, वह आधारवाचक, आधार होना उसे सांधिनी शक्ति कहते हैं, बलराम सांधिनी शक्ति का स्वरूप है, ये भगवान की शक्ति है, कृष्ण भगवान की शक्ति सांधिनी शक्ति, उनका रूप बलराम। यदि शक्ति नहीं होती तो भगवान का परिचय भी नहीं होता, भगवान को कौन जान सकता है, भगवान को जानना बहुत मुश्किल है,
भगवान की यदि शक्ति नहीं होती और शक्ति जब अपने आप को प्रकट नहीं करती तो भगवान का पता भी नहीं चलता। कोई फूल है कितना सुंदर है, सुंदरता भगवान का लक्षण गुण है, तो ये फूल भी कैसे पैदा हुआ वो भी बलराम की शक्ति द्वारा पता चलता है। ये पानी में स्वाद क्यों है, ये भगवान का आश्चर्यजनक शक्ति का परिचय है। ये हवा क्यों चलती है, किसने बनाई हवा, ये हवा पानी हमें सब देने वाले कौन होते हैं, बलराम। तो बलराम भगवान का परिचय कराते हैं ना, इसलिए उनको गुरु कहा जाता है, सर्वप्रथम गुरु। और वही गुरु तत्व यदि हमें शास्त्र द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में मिलता है तो गुरु, गुरु शब्द का मतलब क्या पता है, जो बड़ा सबसे बड़ा भारी उसे गुरु कहते हैं। गुरु का विरोधी शब्द क्या है, छोटा लघु, ये बड़ा भारी होता है। गुरु तो भारी ही होने चाहिए, हल्के फुल्के नहीं होने चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा। जो भारी होता है उसका वजन होता है, दम पड़ता है, बल होता है, ज्ञान का बल, ऐश्वर्य का बल, धन का भी बल होता है ना, हमें बता रहे हैं। तो ये सब बलराम में मौजूद है। भगवान बलराम भी कम आकर्षक थोड़े होते हैं, जब कृष्ण बलराम की जोड़ी खड़ी होती है सारी दुनिया मोहित हो जाती है। वही दोनों भाई मिलकर सबका सर्वनाश करते हैं, कृष्ण बलराम से अलग नहीं बनते और बलराम भी कृष्ण से अलग नहीं होना चाहते, ऐसी भाइयों की भागीदारी है। दो भाई एक दूसरे के, जब कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बाग खेलते थे और थक जाते थे तो बलराम जी कहते हैं कि आओ भैया मेरी गोद में सो जाएगा, कृष्ण को बुला दो, तो इनका सराना यानी तकिया भी बन जाते और भगवान आराम करते बलराम की गोद में। आपको पता होगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि भगवान जो करना चाहते हैं उसमें बलराम दखलगिरी नहीं करते, बलराम दखलगिरी नहीं करता। उसकी बहन सुभद्रा थी ना, तो बलराम चाहते थे कि चलो सुभद्रा की शादी दुर्योधन के साथ करा दे, क्योंकि बलराम दुर्योधन के भी गुरु थे। बलराम के पास जो गदा है ना, तो बलराम ने दुर्योधन को गदा कैसे चलाना सिखाया था, इसलिए दुर्योधन बलराम पर जरा थोड़ा काफी मित्रता रखता था, लेकिन कृष्ण का विरोधी था, भगवान का विरोधी, पता है, इसलिए बलराम भी कुछ नहीं करते हैं। भगवान का विरोधी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दुर्योधन मूर्ख था, बलराम से ताकत सीखकर वो पांडवों को मारना चाहता था, भीमसेन को हराना चाहता था, लेकिन जब बलराम ने देखा कि अब तो दुर्योधन ही बचा है, बाकी के सब मर गए हैं, और भीम ने कसम खाई थी कि दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी गोद में बिठाने के लिए चेष्टा की थी, गंदा आदमी, तो दुर्योधन ने ऐसी कसम, भीमसेन ने ऐसी कसम खाई थी कि ये दुर्योधन की जान में तोड़ दूंगा,
दुष्ट है। तो दुर्योधन और भीमसेन के बीच अंत में गदा युद्ध होता है, सही? बलराम उस समय नहीं थे, पता है क्यों? जब भगवान ने ठान लिया, सोच लिया कि चलो ये सब कौरवों को मारना ही है, अभी ये पांडवों को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, अब उनको मारना ही है। भगवान का मंत्रव्य जानकर बलराम चुपकी से भाग निकले कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं न तो देखना चाहता हूं, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण भगवान अपनी इच्छा पूर्ण करेंगे ही करेंगे, कोई इसकी इच्छा में दखलगिरी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो वैसे चुटी मुठी नाराजगी बताकर वो यात्रा करने निकले गए हैं, सरस्वती के तीरे तीरे जो जो तीर्थ आते थे वहां यात्रा करने निकल गए। उस दरमियान में कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ और कौरवों का नाश हुआ, दुर्योधन बचा था तो उसको भीमसेन के साथ गदा युद्ध करने पड़ा। तो कृष्ण भगवान ने इशारा किया कि दुर्योधन उसकी जान पर मार और तोड़ दे उसे। वहां भी कितनी पॉलिटिक्स खेली जाती थी पता है? वो दुर्योधन की माता गांधारी थी ना, वो जानती थी कि मेरे बेटे की मृत्यु ये करेगा भीमसेन। तो उसने सोचा कि मैं आज तक पवित्र रही हूं, पतिव्रता हूं, मेरी पतिव्रता का फल मेरे बेटे दुर्योधन को दे दो। तो वो तो पतिव्रता कैसी थी, खुद अपनी आंखों पर पाटा बांध कर ही जीती थी कितने सालों तक, जब से शादी की तब से बूढ़े हो गए थे, क्योंकि उसका पति अंधा था। तो वो कहती कि मैं भी अंधी रहूंगी, जान बुझ कर आंख पर पाटा बांधकर उसने ऐसा व्रत लिया। तो गंधारी ने सोचा कि मेरी आंखों में बहुत रोशनी है, बहुत तेज है, वो तेज का बल मैं अपने बेटे दुर्योधन पर देखूं तो अवश्य उसका शरीर वज्र जैसा बनेगा, मरेगा ही नहीं। देखो ऐसी ताका बल का उपयोग करना चाहती थी अपने बेटे को, तो मरेगी। तो उसने दुर्योधन को बुलाया, ए दुर्योधन तो नंगा बनकर आ जा मेरे सामने, कुछ कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो भगवान भी जान गए। तब दुर्योधन सोच में पड़ गया, अरे मैं बड़ा हूं, मेरी मां के सामने नंगा बनकर कैसे जाऊं, मुझे तो शर्म आती। तो कृष्ण भगवान ने कहा, ए दुर्योधन कम से कम केले का पत्ता यहां लगा दे नीचे तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो दुर्योधन ने मान लिया कि क्या केशव तो ठीक कह रहा, चलो। तो गांधारी तो राह देखती थी, क्योंकि उसका तेज यदि उसके शरीर पर पड़े तो कोई भाग में उसको कितनी भी गदा का प्रहार पड़े इजा नहीं होगी। उसने आंख खोली और उसके सारे शरीर को वज्र बना दिया, लेकिन जहां केल का पत्ता था वहां कमजोरियां रहेगी। तो भगवान जानते थे, जानबूझकर उसने पॉलिटिक्स करके दुर्योधन को फंसा दिया। तो गांधारी ने श्राप दे दिया कि केशव तेरा काम है मैं जानती हूं, लेकिन तेरे श्राप से क्या होगा, वो भी जानते हैं। श्राप दे दिया, तू भी किसी के तीर से तो चला जाएगा, लेकिन भगवान तो अपने आप जाते हैं, ऐसे थोड़ा चला जाएगा। तो भगवान के सामने किसी का बल नहीं चलता, इसीलिए बलराम भी भागे, वो युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, नहीं तो अपने शिष्य का नाश नहीं देखेंगे, सही।
उसे पहले भी एक बार ऐसी घटना हो गई थी कि दुर्योधन की बेटी लक्ष्मण, दुर्योधन की बेटी थी लक्ष्मण, तो लक्ष्मण की शादी कृष्ण भगवान उसे उसे उठा लाए थे अपने बेटे के लिए। तो हुआ क्या, वो लड़ाई करने आ गया, लेकिन बलराम को देखकर उसने समझौता कर लिया, क्योंकि तो बलराम के घर गई उसकी बेटी। तो ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स बहुत खेलते थे, माता पिता को पसंद नहीं तो लड़ाई करने आ जाते, सही। लेकिन बलराम की उपस्थिति होते हुए दुर्योधन इत्यादि कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये बलराम भगवान की कभी सामने नहीं होते, वो भगवान श्री कृष्ण जो करना चाहते थे उसकी सेवा में ही मौजूद रहते थे, चाहे अपना भी क्यों शिष्य भगवान के सामने ना आए, तो भी भगवान की तरफदारी हमेशा करते थे वो किसी। तो बलराम को समझना आवश्यक है, यानी कि गुरु क्या कहते हैं वो समझना आवश्यक है। तो बलराम किस ढंग से सारी सृष्टि की रचना में भाग लेते हैं, जहां देखो बलराम का ही ये सारा प्रताप है। विष्णु जी कौन है, तो कहते बलराम के अंश है। विष्णु जी कौन है, तो शंकरषण के अंश कहलाते हैं, महाशंकरषण, महाविष्णु के नाम से जाते। वही शंकरषण का भौतिक गुणावतार में तमोगुण के स्वामी बनकर जब याद, तो उसे शंकर कहते हैं। और शंकर जी भी अपने गले में नाग क्यों लगाते हैं, नाग छाप क्यों रखते हैं, क्योंकि वो शंकरषण तत्व जो शिव तत्व कहलाता है, सशंभु अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत के माता पिता बनकर आते हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना में भी शंकरषण आदि शंकरषण महाविष्णु और महाविष्णु शेषनाग पर लौटते हैं, तो सारा बलराम का ही विस्तार है। अवर एग्जिस्टेंस, हमारी उपस्थिति बलराम द्वारा सिद्ध होती है। बलराम सब कुछ पैदा करते हैं भगवान को समझने के लिए, ये भगवान की शक्ति है, इसलिए इनका कर्तव्य होता है, इनकी फर्ज है, जिम्मेदारी है, बड़े भाई की जिम्मेदारी। वो बड़े भाई बनकर ही आते हैं, भगवान जब आते हैं तब बड़े भाई बनकर आते हैं। जब रामचंद्र आए तो बलराम कौन थे पता है, लक्ष्मण, लक्ष्मण बलराम, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, तो बलराम तो बलदेव है। यहां नित्यानंद प्रभु बलराम, नित्यानंद राम कहलाते हैं। बलराम काफी गुस्से में भी आ जाते हैं, भारी, यदि कोई समझता नहीं तो ठोस कर समझाने के लिए गुस्सा भी बताते हैं। ये नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु का संदेश के भगवान का नाम जपो हर घर घर पे जाते थे, तो इतने करुणामय भी बनते थे, लेकिन जहां जब प्रसाद के बारे में बात होती है, खाने बैठते हैं सभी साथ में, तो इनको काफी असंतोष होता था कि इतना ही खिलाता है तो कितना कंजूस है, ला भर के ला, सबको पेट भर के खिला, हरे कृष्ण में हम लोग दबा के क्यों खिलाते हैं पता है? क्योंकि ये बलराम नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद है। यदि इनको बुलाकर अद्वैत आचार्य बिठाते थे कि चलो आ जाओ नित्यानंद प्रभु आप खाओ तो नित्यानंद प्रभु की ये इतना ही देता है देखो कंजूस तो वो हटा देते नहीं खाना है जा जितना हो सारा लाभ हो तभी उसको संतोष होता है और बाद में वो स्वयं उठकर सबको बांटने लगते हैं। पहले मुझे अर्पण कर बलराम के मैं मुझे ला मैं ही चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण करूंगा मैं दूंगा मुझे अर्पण करो तो बलराम कहते तो हेना भी नहीं नित्याय भाई राधा कृष्ण भाई थे नित्यानंद राम बलराम के बिना हम राधा और कृष्ण को भी नहीं जान सकते इसलिए बलराम की तो बहुत सी महत्ता है। बलराम कोई मामूली भैया नहीं है हमेशा वो बड़े भाई के रूप में आए या छोटे भाई के रूप में आए भगवान की सेवा करना इनका मूल धर्म है। भगवान जो लीला करने आते हैं उसमें साथ देने के लिए आते हैं कभी विरोध नहीं करते उनकी आज्ञा पालन करते भगवान की आज्ञा पालन तो यहाँ कृष्ण भगवान तो छोटे भाई बनकर आए और बलराम बड़े भाई बनकर आए फिर भी कृष्ण भगवान छोटे भाई की आज्ञा मानते हैं देखो बड़ा भैया उल्टा ही धंधा है बड़ा भैया को छोटे भाई की आज्ञा मानना चाहिए लेकिन बड़ा भैया भगवान को जानता है कि भगवान तो वही एकमात्र है कृष्ण भगवान मैं तो इनका विस्तार मेरी जिम्मेदारी है मुझे कृष्ण भगवान कौन है कैसे हैं क्यों हैं कहाँ हैं ये सब मुझे बताना है यदि बलराम नहीं समझाते तो हम नहीं समझ पाते ये बलराम भगवान की शांतिनी शक्ति का मूर्तिमंत तो आज बलराम जी की जयंती है हमें कृष्ण बलराम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इत्यादि जोड़ी की हमेशा सेवा करनी होती है ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है इनको समझने के लिए नित्यानंद प्रभु की आवश्यकता होती है जो बिना नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु अकेले को समझना चाहता है उसे मुश्किल नहीं आएगी तो अभिषेक किया गोरनिताय का लेकिन वो तो आदि कृष्ण बलराम है इसलिए गोरनिताय की भी आज पूजा और अभिषेक किया जाता है सही तो बलराम जयंती भक्ति का बल पाना हो तो हमें ऐसी जगह की आवश्यकता है जिसे हम मंदिर कहते हैं जैसे घटोका में बढ़िया मंदिर बनेगा जब मंदिर का खात मुहूर्त होता है तब अनंत शेष अंदर हम दाखिल करते हैं इनका स्थान जमाते हैं क्योंकि इनके आधार पर ही सारा मंदिर का भाव बनेगा मंदिर भगवान की सृष्टि है भगवान का स्थान होता है भगवान की दुनिया मंदिर में होती है मंदिर में पॉलिटिक्स नहीं चलती कोई भी चीज नहीं चलती सिर्फ वृंदावन जैसा वातावरण ही होता है तो वहां भगवान समझे जाते हैं लोग कहते हैं कि भगवान तो सब जगह है मंदिर की क्या आवश्यकता है तो ये सब कौन समझाएगा मंदिर की व्यवस्था समझाएगा कि मंदिर में किस ढंग से हमें भगवान की प्रार्थना करनी होती है भजन करना होता है अपनी साधना करनी होती है जहाँ रहकर यानी कि भगवान का धाम में वास मंदिर में जो रहता है ना तो भगवान का धाम का वास
अनुभव करता हूं। जो मंदिर में रह सकता है वही वृंदावन जा सकता है। मंदिर में हमेशा आकर हम सेवा करते हैं और सेवा द्वारा हमें भगवान के धाम जो बलराम द्वारा समझा जाता है उसके हमें परिचय होता है। तो आज बलराम जी का जन्मदिन, बलराम जी पता है इनको जन्मदिन पर क्या इनको भेंट दी जाती है? बलराम जी का प्रिय क्या चीज होता है? शहद। बलराम जी को हनी बहुत प्यार होता है। वो तो आज तक किसी ने हनी में से शराब नहीं बनाया, लेकिन बलराम जी सिर्फ सीधा हनी पीकर ही नशे में रहते थे। कोई बहुत चीनी वाला खाता है पता है तो सो जाता है पता है, क्योंकि वो उठ नहीं पाता, इतनी हेवी शुगर हो जाती है। He goes in coma. तो लेकिन बलराम कभी कोमा में नहीं जाते, इतना मजबूत हनी पीते थे, उनका हनी बहुत अच्छा लगता। तो बलराम जी को हनी देते हैं। अभी भोग लगता है? आरती कर लगते हैं, क्योंकि आज जरा जल्दी निपटाना घर जाना है। बलराम जी देखो हवा फूंक रहे हैं। तो सारी रात सारा दिन फूंक रखा नहीं है तो त्रुणावत आया था ना उसको भगा रहे हैं बलराम जी। तोड़ने दो ये हरिकेन आया गोल गोल घूम का पानी का। कोई प्रश्न है? नहीं, कितनी नोट्स लिखा मुझे तो बहुत बोलना था, लेकिन मैंने सोचा कोई और बात बोला क्योंकि इसका अभ्यास है। इसको मैंने सोचा बहुत सारी शक्ति की बात करें, शक्ति का परिचय कैसे होगा। जरा धीरे धीरे समझना चाहिए। यदि शक्ति नहीं है तो शक्तिमान कौन है पता नहीं चलता। भगवान सर्वशक्तिमान है, यदि उनकी शक्ति अपने सामने उपस्थित नहीं है तो भगवान कौन है नहीं समझता। लेकिन शक्ति मौजूद है, शक्ति परिचय कराती है, इसलिए शक्तिमान है उसकी साबिती बलराम देते हैं। और बलराम की कृपा जय जगत गुरु कृष्ण प्रभुपाद की जय।